Masters in Environmental Science, Management, Chemistry, Engineering with 7 years experience. All positions are purely contractual. Applications must be submitted in physical form with all certificates to the Under Secretary Establishment, Ministry of Earth Sciences, Prithvi Bhavan, Lodi Road, New Delhi, 11003. Complete details and the application format is available at www.moes.gov.in. The Indian Bureau of Mines, Ministry of Mines, Government of India invites applications for 8 posts of laboratory assistant in pay level 5 on deputation or short-term contract from officers of the central or state governments, union territories, autonomous bodies, statutory organizations, PSUs, universities or recognized research institutions. The last date for receipt of applications is 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. Detailed information is available on the website at https://www.ibm.gov.in. The Ministry of Culture invites applications in duplicate for the post of Director, South Zone Cultural Centre, Thanjavur, an autonomous body promoting folk and tribal arts across India. The post is to be filled on deputation a short-term contract for 3 years, extendable by 2 years based on performance. Eligible applicants include officers of the rank of Director, Deputy Secretary to Government of India and cultural personalities with at least 10 years of experience. Completed applications must reach the office of the Honorable Governor of Tamil Nadu, Raj Bhavan, Chennai, 600022, within 45 days from the date of publication of this advertisement. Details and application forms available at www.indiaculture.nic.in or you could go on to www.szccindia.org. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Regional Office Shillong invites applications within 45 days for one post of Private Secretary Level 7 and one post of Junior Translator on deputation basis from eligible officers of central or state governments, UTs, PSUs, universities, statutory bodies or recognized research institutions. Full details of qualification, age not exceeding 56 years, terms of deputation, and the application performer is available on the website, that is at www.moef.nic.in. And now we have the employment news in Hindi.
Rozgar Samachar mein aapka swagat hai. Main hoon Sunita aur aaiye sunte hain kahan kahan nikle riktiyon ke liye aap aavedan kar sakte hain. माल और सेवा कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क के आयुक्त का कार्यालय चेन्नई जीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क तमिलनाडु एवं पुदुचेरी जोन के प्रधान मुख्य आयुक्त कुछ रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु उत्कृष्ट खिलाड़ियों से आवेदन आमंत्रित करते हैं पद का नाम कर सहायक कुल 11 पद रिक्त हैं जिसके लिए वेतन स्तर 4 होगा आशुलिपिक ग्रेड 2 के लिए 1 पद रिक्त है वेतन स्तर 4 पर हवलदार के लिए 7 पद मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 1 पद रिक्त है जिसके लिए वेतन स्तर 1 होगा ऐसे उत्कृष्ट खिलाड़ी आवेदन कर सकते हैं इन सभी पदों के लिए जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अथवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेलो इंडिया विंटर गेम्स पैरा गेम्स में भाग लिया हो उम्मीदवारों को क्रिकेट फुटबॉल हॉकी कबड्डी वॉलीबॉल एथलेटिक्स ट्रैक एंड फील्ड तैराकी इनमें से किसी भी खेलों में प्रतिनिधित्व अथवा पदक प्राप्त होना आवश्यक है भर्ती से संबंधित विस्तृत विज्ञापन पात्रता तथा अन्य नियम व शर्तें आपको वेबसाइट gstchennai.gov.in/sportsrecruitment से प्राप्त हो जाएंगे आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 7 जनवरी 2026 है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कल्याणी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स कल्याणी पात्र उम्मीदवारों से सीनियर रेजिडेंट गैर शैक्षणिक पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है जिसका चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा पाठ्यक्रम का नाम है सीनियर रेजिडेंट, गैर शैक्षणिक पद है, जिसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि है 15 जनवरी 2025 10 बजे तक। साक्षात्कार की तिथि रहेगी 29 दिसंबर 2025 और 30 दिसंबर 2025 9 बजे। आपको इस विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी वेबसाइट aimskalyani.edu.in पर प्राप्त हो जाएगी। सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से इस वेबसाइट को देखते रहें, क्योंकि कोई भी संशोधन यदि होगा तो वो इसी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। जनसंख्या अनुसंधान केंद्र लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित जनसंख्या अनुसंधान केंद्र अर्थशास्त्र विभाग में कुछ रिक्त पदों के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पद का नाम रिसर्च इन्वेस्टिगेटर, कुल 4 पद रिक्त हैं। डेटा असिस्टेंट के लिए 4 पद, रिसर्च फेलो कुल 3 पद रिक्त हैं, जो कि संविदा के आधार पर भरे जाएंगे। विस्तृत विवरण तथा आवेदन पत्र अभ्यर्थियों के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्राप्त हो जाएगा। वेबसाइट है www.lkounivi.ac.in। इस वेबसाइट के करियर अनुभाग में जाकर आप विस्तृत विज्ञापन प्राप्त कर सकते हैं। अन्य किसी जानकारी के लिए आप वेबसाइट www.mohfw.gov.in पर जाकर भी देख सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2025 है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली द्वारा कुछ रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पद का नाम डोमेन प्रोफेशनल, आयोग के विभिन्न कार्यों हेतु ये पद होगा। कुल 11 पद रिक्त हैं, जिसके लिए प्रतिमाह पारिश्रमिक रहेगा 60,000 से 70,000 रुपए के मध्य। पात्रता मानदंड, शैक्षिक योग्यता तथा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप वेबसाइट ugc.gov.in/tenders/jobs पर जाकर देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2025 है। श्रोताओं, रिक्ति से संबंधित कोई भी संशय हो तो आप संबंधित संस्थान की वेबसाइट को विजिट कर उसे दूर कर सकते हैं। आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को हमारी शुभकामनाएं।
This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 बज चुके हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूँ आपकी दोस्त और जया भारती और मेरे साथ है मेरी को होस्ट अनुजा कुमार। हेलो अनुजा।
हेलो, नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून जया। जया, डिड यू गो थ्रू द न्यूज़पेपर टुडे? इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट द इटालियन लग्जरी ब्रांड प्राडा विल बी मेकिंग अ लिमिटेड एडिशन कलेक्शन ऑफ सैंडल्स इन इंडिया इंस्पायर्ड बाय द कंट्रीज ट्रेडिशनल फुटवेयर द Kolhapuri chappals from the regions of Maharashtra and Karnataka, blending local Indian craftsmanship with Italian technology and know-how. The humble Kolhapuri, which we have been brought up using every day, if you remember, I used to use Kolhapuri every day in my college days. We'll have an Italian tag from now on and will be available in the international market. No doubt, another feather in the cap of our country, apart from so many exclusive festivals and arts being given UNESCO's intangible cultural heritage stamping. We cover all these exclusive things and much more in our episodes of Parikrama every day, but right now, Let us update our listeners with the news headlines. Jaya?
बिल्कुल, सबसे पहले बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार लोकसभा में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार।
Crop production in the country increases by 44% during the last 10 years, says Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर के सेनापति जिले में 6 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया.
सीनियर कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर यूनियन होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल पासेस अवे. प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड वेरियस लीडर्स कंडोल द डिमाइस.
और आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में एक बस दुर्घटना में 9 लोगों की मौत और 22 घायल.
And Jaya, it's now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about 15th National Street Food Festival. Jaya, Indian street food has always been a vibrant, diverse world of quick, flavorful snacks and meals featuring iconic dishes like crispy samosas, aloo tikki, pav bhaji, chole bhature, kathi rolls, offering a variety of taste of India's culinary culture. So from 12th to 14th December, Jawaharlal Nehru Stadium in New Delhi is going to be transformed into a carnival of flavors, culture and entertainment as it hosts the 15th National Street Food Festival.
बिल्कुल अनुजा, और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि 3 दिन का यह सांस्कृतिक कार्यक्रम दिल्ली के प्रसिद्ध त्योहारों के कैलेंडर का हिस्सा है, जो आगंतुकों को संगीत और विविध क्षेत्रीय व्यंजनों का मिश्रण प्रदान करता है, जिन व्यंजनों का भी आपने जिक्र किया.
द नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल इज अ प्रोमिनेंट इनिशिएटिव ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया, अ नेटवर्क डेडिकेटेड टू एडवोकेटिंग फॉर स्ट्रीट वेंडर्स अक्रॉस द कंट्री.
इसकी स्थापना इन विक्रेताओं को आवाज देने के लिए की गई थी. NASVI उनकी आजीविका, सामाजिक सुरक्षा संबंधी चिंताओं और भारत के जीवंत खाद्य परिदृश्य में उनके द्वारा लाए जाने वाले सांस्कृतिक मूल्य को उजागर करने के लिए काम करता है.
Yes, and the National Street Food Festival is more than just a food festival. It's a platform that elevates street food vendors and provides them the recognition they deserve.
बिल्कुल, और 3 दिन का यह भव्य आयोजन बेशक भोजन के बारे में है, लेकिन यह भारत की आत्मा का भी उत्सव है. यानी भारत के स्ट्रीट वेंडर अपने साथ भारत की गलियों से प्रामाणिक और अलग अलग तरह के स्ट्रीट फूड को एक मंच पर लेकर आते हैं.
Yes, and there will be handcrafted treasures and artisanal products from across India, perfect for discovering unique gifts or souvenirs, along with cultural performances from celebrated artists that will disclose to our listeners in a short while.
बिल्कुल, और 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 300 से अधिक स्ट्रीट वेंडरों द्वारा तैयार किए गए 560 से अधिक व्यंजन, उपस्थित लोग चाट एरेना जैसे क्यूरेटेड अनुभव क्षेत्रों का पता लगा सकते हैं, जिसमें अद्वितीय क्षेत्रीय चाट पेश की जाती है.
Not only this, there will be exciting biryani battle with iconic biryanis, the aromatic chai junction offering teas from across the country, and the high energy pani puri contest. A dedicated kids zone, Dil to Bachcha Hai Ji, will feature exciting activities like quiz challenges, painting competitions, plus various games to keep the little ones entertained throughout the festival.
बिल्कुल, और सितारों से सजी मनोरंजन श्रृंखला भी वहां पे मौजूद है, और श्रीलंका की लोकप्रिय योहानी के साथ झूमने के लिए तैयार हो जाइए, जिनके वायरल हिट मानिके मागे हिते ने पॉप और हिप हॉप के मिश्रण के साथ दुनिया भर में धूम मचा दी.
ओ यस, अलोंग विद आशीष विद्यार्थी हु इज अ नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर, कैलाश खेर विल आल्सो मेस्मराइज विद हिज सोलफुल क्लासिक्स. कैलाश खेर शेयर्स व्हाई दिस फेस्टिवल इज मोर देन फूड.
दिल्ली की स्पेशियलिटी है खाना, और उसमें भी स्ट्रीट फूड, यानी गली नुक्कड़ों का जो खाना होता है, और उसमें यदि आप खुशबू और स्वाद इसके शौकीन हैं, तो पूरे भारत से, तो क्या पूरे दुनिया से यदि आकर्षण का कोई केंद्र बनता है तो वो है दिल्ली. दिल्ली में स्ट्रीट फूड फेस्टिवल हो रहा है, जिसमें आ रहे हैं कैलाश खेर एंड कैलासा बैंड. हम लोग होंगे लाइव इन कॉन्सर्ट में. अगर स्ट्रीट फूड का पूरा मजा लेना है तो एक से एक जादूगर वहां स्वाद के मिलने वाले हैं आपको.
The festival will also showcase winners of the Create in India Challenge, identified via the Ministry of Information and Broadcasting's Waves platform.
और बैंड शिवोहम समेत ये युवा कलाकार सूफी और बॉलीवुड की धुनें मंच पर पेश करेंगे.
So yes, let's hear from the band Shivoham.
Mm-hmm. Namaskar, we are band Shivoham and we are thrilled to perform at the National Street Food Festival, JLN Stadium, from 12 to 14 December. So get ready for a vibrant musical journey from devotional and folk to Bollywood and fusion. तो आइए संगीत के साथ साथ भारत के हर राज्य के लाजवाब जायकों का भी स्वाद लीजिए।
चिराग तोमर अपने साथी तालवादक साहिल वर्मा के साथ लोकप्रिय हिंदी फिल्मों की गानों की भी प्रस्तुति देंगे यहाँ पे।
और राजस्थानी फोक म्यूजिशियन निशु शर्मा विल आल्सो फीचर अलोंग विद फ्लूट आर्टिस्ट नयन कृष्ण। अ बैंड फ्रॉम द मालदीव्स विल आल्सो परफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, लेंडिंग एन इंटरनेशनल नोट टू द फेस्टिवल एटमॉस्फेयर।
बिल्कुल, और कल्पना कीजिए कि आप गर्मा गर्म पानी पूरे का आनंद ले रहे हैं, कैलाश खेर की लाइव प्रस्तुति पर थिरक रहे हैं, मनमोहक हस्तशिल्प देख रहे हैं और बच्चों की खिलखिलाती हंसी से पूरा वातावरण गूंज रहा है। और यही है NSSFF यानी कि नेशनल
फूड फेस्टिवल। यस, सो मार्क योर कैलेंडर्स फॉर डिसम्बर 12 to 14। कम हंगरी फॉर फूड, आर्ट, म्यूजिक एंड कल्चर एंड इमर्स योर सेल्फ इन द ट्रू एसेंस ऑफ इंडिया एट द नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2025 शो। सो इन शॉर्ट, द विजिटर्स कैन एक्सपेक्ट वेरियस स्वाद जायका अलॉन्ग विथ मनोरंजन एंड कला ऑफ अ बिलवड इंडिया।
तो चाहे आप खाने पीने के शौकीन हो, संस्कृति प्रेमी हो या बस एक मज़ेदार दिन बिताना चाहते हो, इस उत्सव में आप सभी के लिए कुछ ना कुछ है। तो श्रोताओं, साल के सबसे बहुप्रतीक्षित भोजन उत्सव को देखने से न चूकें। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास आज क्या कुछ खास है।
एंड टू बिगिन विथ, लेट्स go to Thiruvananthapuram. The 30th International Film Festival of Kerala, one of the state's most anticipated cultural events, opens in Thiruvananthapuram today. The 8-day festival will run up to 19th of December. We have more on this from our Thiruvananthapuram correspondent.
Nishagandhi Open Auditorium in Thiruvananthapuram is all set for the inauguration of the 30th International Film Festival of Kerala. Although the formal ceremony is scheduled for 6 this evening, film screenings began this morning. This year's festival will feature 206 films from 82 countries across 26 categories screened in 16 theatres across Thiruvananthapuram. 11 films are lined up for screening today, several of which have already been shown. The World Cinema section opened with Immanuel Finglin's Maria Room at Kairali Theatre. Screenings in the competition category will begin tomorrow. With its diverse lineup and strong global representation, the 30th IFFK promises an immersive and vibrant week of cinema in the state capital. A large number of film lovers from within Kerala and outside the state have arrived in Thiruvananthapuram for the festival. Let's listen to Cartoon Academy Chairman Sudhir Nag, who travels from Delhi every year to be part of this celebration of films.
Myself, Sudhir Nag, cartoonist. I traveled all the way from Delhi to participate in this India International Film Festival. Last few years, I am participating in this film festival happening at Trivandrum. I can see the number of youngsters increasing every year. This year also, I can see more youngsters in and around all theatres.
As the curtains rise on this year's edition, the IFFK once again transforms Thiruvananthapuram into a vibrant ground of cultures, ideas and cinematic talents.
अब श्रोताओं, बात करते हैं नई दिल्ली के, जहां लिपि और पांडुलिपि संरक्षण पर आयोजित एक विशेष कार्यशाला में अरुणाचल प्रदेश प्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रस्तुत क्षेत्र प्रलेखन में अरुणाचल प्रदेश के 5 जिलों में महाभारत और रामायण के प्रसंगों वाले ग्रंथों सहित दुर्लभ पांडुलिपियों और पारंपरिक लिपियों की खोज का खुलासा हुआ।
A delegation from Arunachal Pradesh, comprising Mamta Ruba, Secretary Art and Culture and Civil Aviation, Lieutenant Colonel T.C. Tayum, OSD Research and Nodal Officer Gyan Bharatam Mission, and Sri Manu, Assistant Director, Department of Art and Culture, attended a special workshop on script and manuscript preservation during the 20th session of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, ICH20COM, in New Delhi, organized by the Ministry of Culture, Government of India. During the meeting, Secretary Mamata Rewa highlighted Arunachal Pradesh's extraordinary manuscript traditions, including the leaked Thai manuscripts of Namsai district, the ancient Buddhist Kangyur scriptures, and other Buddhist and indigenous manuscripts. A detailed presentation on the Gyan Bharatam mission was delivered by Lieutenant Colonel D.C. Tayum, showcasing extensive field documentation carried out in Tawang, West Kameng, Siomi, Upper Siang, and Namsai districts of Arunachal Pradesh. The presentation revealed the discovery of rare manuscripts and traditional scripts, including texts containing episodes from the Mahabharata and the Ramayana, a significant indication of deep historical and literary interlinkages among the communities of Arunachal Pradesh. The presentation underscored the urgent risk and need for preservation. Responding to the presentation, chairing the meeting, Vivek Agarwal, Secretary, Ministry of Culture, announced that a central expert team will soon visit all five districts to begin scientific documentation, digitization, and conservation of manuscripts. He also informed that a dedicated manuscript and digitization support cell for Arunachal Pradesh will be established at the ministry to ensure coordinated and long-term assistance to the state. For Parikrama, Kenyum Ango, Akashwani, Itanagar.
From Thiruvananthapuram to Itanagar, and now from Itanagar to Ladakh. This is what Parikrama is all about. In Ladakh, in line with the National Education Policy 2020, the School Education Department of the Union Territory of Ladakh is undertaking a series of reforms to strengthen the quality of education in government-run schools. As part of these ongoing measures, an independent assessment was successfully conducted across Leh and Kargil districts to evaluate student learning outcomes.
The assessment covered students of class 1st to 7th and class 9th, with nearly 11,000 students appearing in the MCQ-based examination. The initiative marks a significant step towards ensuring competency-based learning as envisioned under New Education Policy 2020. For the first time, OMR-based answer sheets were introduced to promote transparency, faster evaluation, and data-driven decision-making. Question papers were framed in strict alignment with the prescribed learning outcomes, reflecting NAP's emphasizes on foundational literacy, numeracy, and conceptual clarity. The examination was held simultaneously across all education blocks. Duty magistrates, center superintendents, and invigilators supervised the process, while CCTV cameras installed in most centers ensuring robust monitoring. Officials of the school education department stated that such assessment will help identify learning gaps, improve teaching practices, and strengthening classroom delivery. The data generated will guide targeting academic intervention and capacity building programs for teachers. The independent assessment is part of a broader set of initiatives being undertaken by the UT administration, including teachers training, digital learning promotion, curriculum alignment, and improved monitoring system aimed at transforming government schools into vibrant NAP-compliant learning spaces in Ladakh. For Parikrama, this is Anayat Ali from Kargil Union Territory, Ladakh.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल. तो बात स्क्वैश विश्व कप की, जहां भारत क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है. चेन्नई में प्री क्वार्टर फाइनल में अपने दूसरे पूल मैच में भारत ने ब्राजील को 4-0 से हराया. वेलवन सेंथिल कुमार ने पेड्रो मोमेटो पर 3-0 से जीत दर्ज की. वहीं टूर्नामेंट की सबसे युवा खिलाड़ी अनाहत सिंह ने लॉरा सिल्वा को 3-0 से हराया. इसके बाद अभय सिंह ने डियोगो गुब्बी को 3-0 से मात दी और जोशना चिनप्पा ने वॉकओवर के जरिए जीत पक्की की. और इससे पहले भारत ने अपने पहले मैच में स्विट्जरलैंड को भी 4-0 से हराया था. तो श्रोताओं, बता दें कि 2025 के टूर्नामेंट में चार ग्रुप में 12 टीमें शामिल हैं. इनमें से प्रत्येक ग्रुप के शीर्ष दो टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगी. भारत का अगला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा.
एंड नाउ कमिंग टू द न्यूज फ्रॉम द बिजनेस. Benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty, closed over 0.5% higher for the second straight session today. Both the indices opened on a strong note amid positive global cues and rising optimism that an India-US trade deal may be finalized soon. Sentiment remained upbeat throughout the day, driving the indices upward. The Sensex surged 450 points to close at 85,268, while the Nifty added 148 points to settle at 26,047. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading up at 1,34,520 rupees per 10 grams, and silver was trading up at 1,99,120 rupees per kilogram when reports last came in.
अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
हम स्वाधीनता सेनानी पा तोगन नेंगमिंजा संगमा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे 12 दिसंबर 1872 को शहीद हुए थे। गारो जनजाति के नेता तोगन का नाम मेघालय के शहीद स्मारक में अमर है।
1862 में अंग्रेज मेघालय की गारो पहाड़ियों की तरफ बढ़ने लगे तो उन्हें स्थानीय जनजातियों के विरोध का सामना करना पड़ा।
गारो योद्धा पा तोगन नेंगमिंजा ने ब्रिटिश सेना की छत्रछाया में आने से मना कर दिया, जो उनकी मातृभूमि पर कब्जा करना चाहते थे। दिसंबर 1872 में ब्रिटिश सैनिकों ने गारो हिल्स में माचा रोंकरे गांव में शिविर बनाया। पा तोगन और उनके गारो योद्धाओं ने अंग्रेज सैनिकों पर हमला कर दिया।
इस हमले से भौचक्की ब्रिटिश सेना कुछ समय बाद एकजुट हुई और कड़ा प्रतिकार किया। गारो योद्धा अंतिम सांस तक लड़े, लेकिन गारो योद्धाओं की तलवारों और बर्छों तथा ब्रिटिश बंदूकों के बीच कोई मुकाबला था ही नहीं। पो तोगन नेंगमिंजा युद्ध में गोली लगने के कारण शहीद हो गए।
महान गारो योद्धा और नेता को हमारा शत शत नमन।
आज हम स्वाधीनता सेनानी, समाज सुधारक और दार्शनिक बाबा राघव दास को भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म 12 दिसंबर 1896 को हुआ था।
1921 में महात्मा गांधी गोरखपुर आए तब बाबा राघव दास ने उनसे मुलाकात की और स्वतंत्रता के लिए उनके कार्यों और गरीबों और वंचित वर्गों के लोगों की सेवा से बहुत प्रभावित हुए।
बाद में दांडी मार्च के दौरान बाबा भी गांधी जी के साथ रहे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बाबा राघव दास को कई बार जेल जाना पड़ा। 12 में राघव दास का आश्रम स्वतंत्रता से संबंधित गतिविधियों का केंद्र था। वे राम प्रसाद बिस्मिल के नजदीकी माने जाते थे। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी के बाद बाबा राघव दास ने आश्रम में उनका स्मारक बनवाया।
स्वतंत्रता के उपरांत बाबा राघव दास ने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने देवरिया, बरहज और कुशीनगर में कई शिक्षण संस्थाएं शुरू की। 15 जनवरी 1958 को महान संत और दार्शनिक बाबा राघव दास का निधन हो गया।
आज हम स्वाधीनता सेनानी कोंडा वेंकट रंगारेड्डी को भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म 12 दिसंबर 1890 को हुआ था। वे केवी रंगारेड्डी के नाम से भी लोकप्रिय रहे। उन्होंने हैदराबाद में निजाम के रजाकारों से भी लड़ाई लड़ी। हैदराबाद के भारत में विलय के बाद रेड्डी 1959 में आंध्र प्रदेश के राजस्व मंत्री और 1961 में उप मुख्यमंत्री बने। उन्होंने तेलंगाना आंदोलन में भी भाग लिया और उनके सम्मान में तेलंगाना में एक जिले का नाम रखा गया।
आज हम स्वाधीनता सेनानी बाबू गेनू सैद को भी स्मरण कर रहे हैं। गेनू बम्बई की एक मिल में मजदूर थे। वे महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन की भावना से बहुत प्रभावित हुए।
12 दिसंबर 1930 को मैनचेस्टर का कपड़ा व्यापारी जॉर्ज फ्रेजियर फोर्ट रीजन में अपनी दुकान से विदेश में बने कपड़े बम्बई बंदरगाह ले जा रहा था।
कलभा देवी रोड पर भांगवाड़ी के निकट बाबू गेनू ट्रक के सामने खड़े हो गए और महात्मा गांधी के सम्मान में नारे लगाने लगे। पुलिस अधिकारी ने ट्रक चालक को आदेश दिया कि ट्रक बाबू गेनू पर चढ़ा दिया जाए, लेकिन ट्रक चालक भारतीय था और उसने गाड़ी आगे बढ़ाने से मना कर दिया। उसके बाद ब्रिटिश पुलिस अधिकारी खुद ट्रक चलाने लगा और बाबू गेनू पर ट्रक चढ़ा दिया।
ट्रक से कुचलने पर बाबू गेनू की मृत्यु हो गई। इससे पूरे बम्बई में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हड़ताल हुई और विरोध प्रदर्शन भी हुए। शहीद बाबू गेनू को शत शत नमन।
आज ही जयंती है भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और हिंदू महासभा के सदस्य बालकृष्ण शिवराज मुंजे की। वे 1927 से 1928 तक अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। इनका जन्म 12 दिसंबर 1872 को मध्य प्रांत जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ है वहां बिलासपुर में हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बनवाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। वे संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार के राजनीतिक गुरु थे।
Today is also the death anniversary of the national poet and Padma Bhushan awardee Maithili Sharan Gupta, one of the most important modern Hindi poets. He is considered one among the pioneers of Khadi Boli poetry and wrote in Khadi Boli dialect at a time when most Hindi poets favored the use of Braj Bhasha dialect. Known as Dadda in literary circles, his notable work, especially Bharat Bharati in the year 1912, made a lasting impact during the independence movement. Recognizing his immense contribution, Mahatma Gandhi honored him with the title Rashtrakavi. Rashtrakavi Maithili Sharan Gupta has left behind a legacy of priceless literature and his brilliant work is still remembered by the masses.
बिल्कुल काव्य के क्षेत्र में उन्होंने इस तरह की लेखनी की कि संपूर्ण देश में राष्ट्रभक्ति की भावना भर दी। उन्होंने लिखा था, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। उन्होंने अपने काव्य में एक ओर भारतीय राष्ट्रवाद, संस्कृति, समाज तथा राजनीति के विषय में नए प्रतिमानों को प्रतिष्ठित किया, वहीं दूसरी ओर व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के अंतः संबंधों के आधार पर भी इन्हें नया अर्थ प्रदान किया। नारियों की दशा को व्यक्त करते हुए उनकी कुछ पंक्तियां हैं जो पाठकों के हृदय को में करुणा उत्पन्न कर देती है। उन्होंने लिखा था, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। भारत सरकार ने उनकी सेवाओं को देखते हुए उन्हें 2 बार राज्यसभा की सदस्यता प्रदान की थी और 1954 में उन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया गया था, जैसा कि अभी अनुजा जी ने बताया। आज ही के दिन ब्रज के निवासी एक साहित्यकार, नाटककार और संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान राधा चरण गोस्वामी जी ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। गोस्वामी जी ने ब्रज भाषा का समर्थन किया, उन्होंने मौलिक नाटकों की रचना की और बांग्ला भाषा की अनेक पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया। गोस्वामी जी ने समस्या प्रधान मौलिक उपन्यास लिखे, जैसे कि बाल विधवा, सर्वनाश, अलकचंद और भी ना जाने कितने। वे हिंदी के प्रथम समस्या मूलक उपन्यासकार थे।